ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंद्रप्रस्थ विद्यालय के शताब्दी समारोह में सम्मिलित हुई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा को सौर ऊर्जा संचालित बनाने पर बैठक की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजधानी में बढ़ती गर्मी के चलते सभी अस्पतालों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन को आज का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इसका एकमात्र उपाय जैन समुदाय की सतत जीवन शैली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैन समुदाय सदियों से सादगी, स्थिरता और संयम के सिद्धांतों का पालन करता रहा है। श्री मोदी ने स्वदेशी उत्पादों की अधिक से अधिक खरीद करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के महत्व को रेखांकित किया।
साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूँ, जो सामान बना है भारत में, जो बीके भारत में भी और दुनिया भर में, जिस सामान को बनाने में किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है।
नवकार महामंत्र के महत्व के बारे में बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये मंत्र विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है।
नवकार महामंत्र का यह दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा।
श्री मोदी ने लोगों से नौ संकल्प करने का आह्वान किया। ये नौ संकल्प हैं: जल संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छता, स्वदेशी उत्पादों को अपनाना, घरेलू पर्यटन, जैविक खेती, स्वस्थ जीवन शैली, योग और खेल तथा जरूरतमंदों की सहायता करना। श्री मोदी ने ज्ञान को संरक्षित रखने के सरकार के कर्तव्य के रूप में प्राकृत और पाली को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के मिशन लाइफ के लिए अनुकूल है। श्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण साहित्यों के गुम हो जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ज्ञान भारतम अभियान की शुरुआत करेगी।
हम ज्ञान भारतम मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंद्रप्रस्थ विद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने के समारोह में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि छात्रों के साथ मिलकर सरकार को एक विकसित दिल्ली का मार्ग प्रशस्त करना है। उन्होंने कहा कि इंद्रप्रस्थ विद्यालय के छात्रों से बात करके बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की तरक्की युवाओं के हाथों में है।
यंग स्टूडेंट्स के साथ मिल करके हमें विकसित दिल्ली के लिए रास्ता बनाना है। पानी को बचाना, पेड़ को लगाना, स्वच्छता अभियान, देश के लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करना, लोकल के लिए बोलना, देश के अपने डेस्टिनेशंस को पहले घूमना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के पर्यावरण को और देश को प्रगति की राह पे ले जाने वाला है।
आम आदमी पार्टी ने राजधानी के स्कूलों में फीस वृद्धि के लिए दिल्ली की नई सरकार को जिम्मेदार बताया है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने आज एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि शहर के कई स्कूलों की फीस में 30% से 80% तक की बढ़ोतरी हुई है। सुश्री आतिशी का आरोप है कि ये फीस वृद्धि स्कूल प्रशासन और दिल्ली सरकार के बीच मिलीभगत का परिणाम है। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय ने सुश्री आतिशी के इन आरोपों को निराधार बताया। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि विपक्ष की नेता खबरों में बने रहने के लिए ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मंत्रालय ने पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा को सौर ऊर्जा संचालित बनाने को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग और विधानसभा के अधिकारियों ने सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना पर चर्चा की। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान विधानसभा की छतों का ड्रोन से निरीक्षण भी किया गया।
इस परियोजना के तहत 5 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसे अगले 60 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसके तहत विधानसभा को 10% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। विधानसभा कार्यालय के अनुसार इस पहल से हर महीने करीब 15 लाख रुपए की बिजली की बचत होगी। इस परियोजना का उद्देश्य 200 किलोवाट के पुराने सौर रूफ टॉप सिस्टम को हटाना, बिजली का खर्च और कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा लोगों में हरित ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। विधानसभा अध्यक्ष ने आगामी मानसून सत्र से पहले इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार हो चुकी है। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार इसके लिए कल से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि अंत्योदय योजना के तहत करीब 2,60,000 लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि पहले चरण में 40 से 42 दिनों के भीतर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
अंत्योदय योजना में जो लोग उसमें आ रहे हैं उन सबको ले रहे हैं। 2,60,000 लोग को हमने लिस्ट आउट कर लिया है। पहले फेज में हम उनको लगभग 40 से 42 दिन में देंगे। उसके बाद सेकंड फेज हम चालू करेंगे और ये एक दिल्ली वालों के लिए जो दिल्ली की सौगात थी, दिल्ली को मिलना चाहिए था, जो पिछली सरकार ने इसको रोक के रखे हुए थे, उसकी शुरुआत कल से हम चालू कर देंगे।
दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच कल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित रहेंगी। इसके अलावा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। दिल्ली के मेयर महेश कुमार खिंची ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी द्वारा हाउस टैक्स के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगिता शुल्क लगाने को दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया है। श्री खिंची ने इस संदर्भ में निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार को पत्र लिखकर इन शुल्कों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निगम के पर्यावरण प्रबंधन विभाग को उपयोगिता शुल्क लगाने से पहले इसे सदन में पारित कराना आवश्यक था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मादक पदार्थ निरोधी शाखा की एक टीम 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 27 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिसकी अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर रेलवे और रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा के बीच नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, गाजियाबाद, अयोध्या और वाराणसी रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन योजना और होल्डिंग क्षेत्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य इन प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुविधा बढ़ाने और भीड़ नियंत्रण को सुदृढ़ करना है। सरकार ने आज प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति पाकला कटपड़ी सिंगल रेल लाइन खंड के दोहरीकरण को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में बताया कि इस मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से करीब 400 गांवों के 14 लाख लोगों को लाभ होगा। सरकार ने 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे जीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम होगी।
पूरे चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकूला को लेके एक रिंग रोड जैसा कॉन्सेप्ट बना है, जो कि 6 लेन जीरकपुर बाईपास प्रोजेक्ट है। 1878 करोड़ रुपीस का है, करीब 19.2 किलोमीटर, और इसको पीपीपी में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट मिलेगा, हिमाचल का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से ही हिमाचल की तरफ जा सकते हो।
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को भी स्वीकृति दी। इसका आरंभिक परिव्यय 1,600 करोड़ रुपए है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे किसानों को प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और 78 परियोजनाओं में 80,000 किसानों को शामिल किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजधानी में बढ़ती गर्मी के चलते सभी अस्पतालों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अस्पतालों को चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त रखने और पर्याप्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में व्यवस्थाओं के जायजे के लिए वे औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं।
हमने अपने हॉस्पिटलों में साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इस जो गर्मी का जो लू का अलर्ट है उसमें आपको अपनी मेडिकल व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, पीने के पानी की व्यवस्था रखनी है और मैं खुद कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में आके औचित्य निरीक्षण कर सकता हूं कि ये व्यवस्था है कि नहीं है। लू में किसी को हीट स्ट्रोक होता है उसके लिए सारी चीजों के लिए हॉस्पिटल में व्यवस्था रहनी चाहिए और दिल्ली की जनता को ऐसी परेशानी से समस्या ना आए उसकी व्यवस्थाओं के लिए हम तत्पर हैं।
महिला और बाल विकास मंत्रालय पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए पोषण पखवाड़ा 2025 मना रहा है। ये पहल मिशन पोषण के दूसरे चरण का हिस्सा है जो सामुदायिक सहभागिता प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है। मंत्रालय ने कहा कि जीवन के पहले 1,000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना पोषण पखवाड़ा 2025 का एक प्रमुख विषय है जिसमें गर्भाधान से लेकर 2 वर्ष की आयु तक पोषण के महत्व पर जोर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण अवधि आजीवन स्वास्थ्य और विकास की नींव रखती है। गर्भावस्था और बचपन के दौरान पर्याप्त पोषण बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रालय कुपोषण को दूर करने के लिए 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मना रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में पलायन कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीतियां बनाई जानी चाहिए। नई दिल्ली में आज किसान कुंभ 2025 कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि इन नीतियों से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में किसानों और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान केवल 14% है। श्री गडकरी ने किसानों को नई तकनीक सीखने और उद्यमी बनने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने किसानों से एक दूसरे के साथ अपने कौशल और अनुभव साझा करने तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने का भी आग्रह किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो दर 6% हो गई है। रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष में लगातार दूसरी बार रेपो दर घटाई है। इससे पहले फरवरी में रेपो दर कम की गई थी। रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI से बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर UPI लेनदेन की सीमा बढ़ाने की संभावना का पता लगाने को कहा है। RBI ने कहा है कि लेनदेन की उच्च सीमाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि दोपहर के समय गर्म हवा के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंद्रप्रस्थ विद्यालय के शताब्दी समारोह में सम्मिलित हुई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा को सौर ऊर्जा संचालित बनाने पर बैठक की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजधानी में बढ़ती गर्मी के चलते सभी अस्पतालों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।